लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह मूर्ख है, किंतु समझदार व्यक्ति मौन रहता है। गप्पी गुप्त बातें प्रकट करता है, किंतु विश्वासी उन्हें छिपाए रखता है। नेतृत्व के अभाव में राष्ट्र नष्ट हो जाता है, किंतु परामर्शदाताओं की भारी संख्या में कल्याण है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 12 से लेकर 14 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रज्ञा और विवेक का मार्ग ही प्रेम और सम्मान का मार्ग भी है। किसी का तिरस्कार करना व्यक्ति के श्रेष्ठ ज्ञान और उसकी बुद्धिमानी का परिचायक नहीं है, बल्कि यह उसकी बुद्धि की विफलता है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि जो व्यक्ति पड़ोसी को दुख देता है, पड़ोसी की हानि करता है, वह मूर्ख है, उसमें ज्ञान का अभाव है। जबकि जो व्यक्ति मौन रहता है वह समझदार है, उसे पता है कि कब बोलना और कब मुंह बंद रखना। फिर उक्त पदों में गप्पी यानी कि फिजूल की बातें करने वाले या अनियंत्रित बात करने वाले और मन गढ़ंत कहानी सुनाने वाले को भी मूर्ख कहा गया है, क्योंकि ऐसा कर वह अपनी किसी बात को गुप्त नहीं रख पाता है और खुद अपनी क्षति के साथ साथ अपने आसपास रहने वालों का भी अहित करता है। श्रोताओ, हमने बाइबल आचार्य ब्रिजेस के कथन से आपको अवगत कराया था, जो कहते हैं, गपशप लड़ाने वाले क्रूर आदमी के करीब रहना सुरक्षित नहीं है, जो अपने साथी प्राणियों की खुशी से खिलवाड़ करता है, क्योंकि जितनी फुर्ती से वह हमारे साथ अपने पड़ोसी का विश्वासघात करता है, उतनी ही फुर्ती से वह पड़ोसी से हमारे विषय में विश्वासघात करेगा। श्रोताओ, क्या कब कहना और कब मौन रहना, इसके लिए भी मार्गदर्शन की आवश्यकता रहा करती है। जो लोग भलाई में लगकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें यह ज्ञान मिल जाता है कि कौन सी बात बोली जानी चाहिए और कब मौन रहना चाहिए। प्रभु ईश्वर में विश्वास के कारण, ईश नियमों पर भरोसे के कारण वे प्रेम और प्रज्ञा दोनों से अभिभूत हो जाते हैं तथा गोपनीयता के लिए मार्गदर्शन पाते हैं। 14वें पद में लेखक कहता है, नेतृत्व के अभाव में राष्ट्र नष्ट हो जाता है, किंतु परामर्शदाताओं की भारी संख्या में कल्याण है। नेतृत्व और मार्गदर्शन की जरूरत सभी को हुआ करती है। हमारे पास अधिकार व्यवस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, उन्हीं के अधीन रहकर हम अपने दैनिक कार्यों को अंजाम देते हैं, किंतु जब नेतृत्व ही विफल हो जाता है तब सारा देश बर्बाद हो जाता है। यदि हमारे शासनाधिकारी और नेता स्वार्थ, अहंकार और भ्रष्टाचार में लिप्त रहें तो नागरिकों का क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसके विपरीत जब वे जन कल्याण की बात सोचते हैं और अपनी भूमिकाओं को भलीभांति निभाते हैं, तब अन्यों को भी साथ लेकर उनसे भी सलाह मशवरा कर राष्ट्र को नागरिकों के लिए एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण स्थल बनाते हैं। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, परामर्शदाताओं की भारी संख्या में कल्याण है। सार यही कि यदि बहुत से परामर्शदाता होंगे तो रायें भी बहुत सारी मिलेंगी जो सुरक्षा और शांति के लिए बहुमूल्य सिद्ध होंगी। इसके विपरीत जब एक ही व्यक्ति सब कुछ का निर्णय खुद लेना चाहता है तब वह खुद तो अपना अहित करता ही है, सारे देश को भी विनाश की ओर ले जाता है। इतिहास गवाह है कि कुछ एक हठधर्मी, जिद्दी और अहंकारी व्यक्तियों के कारण राष्ट्र तबाह हो गए। श्रोताओं, यह याद रखना हितकर होगा कि किसी भी पुरुष या महिला के पास सभी वरदान और प्रज्ञा नहीं होती, इसलिए निर्णयों में अधिक से अधिक ज्ञान और सुरक्षा लाने के लिए अनेक सलाहकारों के सुझाव संपूर्ण देश के लिए हितैषी सिद्ध होते हैं। आगे 11वें अध्याय के 15वें और 16वें पदों में लेखक सावधान कर कहता है, जो अपरिचित की जमानत देता है वह हानि उठाएगा और उत्तरदायित्व अस्वीकार करने वाला झंझट से बचता है। सहृदय नारी का सम्मान होता है और परिश्रमी व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। श्रोताओं, सामान्य तौर पर संपत्ति का दुरुपयोग न करने की सलाह हमें दी जाती है, तथापि बहुत बार हम इस सलाह की उपेक्षा कर देते हैं और मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं जो हमारे हित में नहीं होता, किंतु मूर्खता की वजह से या अपने स्वार्थ के लिए या फिर नाम कमाने के लिए हम ऐसा करते हैं। श्रोताओं, इस बात को ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है, जिन्होंने हमें यह निर्देश देने की शक्ति सुरक्षित रखी है कि हम अपने वरदानों का उपयोग कैसे करें। हम अपनी संपत्ति के मालिक नहीं हैं, हम केवल उसके भंडारी मात्र हैं। ईश्वर ने अपने कानून के अंतर्गत हमारे हितों को भी रखा है। उनका ध्यान करने पर हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हम क्या करें और क्या नहीं। ईश्वर की कृपा से ही दान देना हम सीखते हैं, हम उदार मना बनते हैं और यह उदारता सबसे पहले अपने ही घर से शुरू होनी चाहिए, अर्थात परिवार में अपने आस पड़ोस रहने वालों के संग तथा कार्यालयों में अपने सहयोगियों के संग सभ्य आचार व्यवहार, यही है उदारता, अन्यों के साथ विनम्रता से पेश आना। हमारा ऐसा व्यवहार ही हमें विवेकी और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति बनाता है। वस्तुतः श्रोताओं, 15वें पद में यह परामर्श दिया गया है कि हम जल्दबाजी में किसी अजनबी की गारंटी नहीं दें, किसी की जमानत नहीं दें, क्योंकि इससे हम अपने आप की और अपने परिवारों की हानि करते हैं। हमारे इस संसार से चले जाने पर हमारे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, वे संकट में पड़ जाते हैं। अस्तु, किसी अजनबी के लिए जमानत देना समझदारी की बात नहीं है। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, किंतु परिस्थिति को परख कर ही किसी की मदद की जाए। हमारा कोई कार्य हमारे आसपास रहने वालों के लिए खतरा न बने, इसका ध्यान अवश्य रखा जाए। दूसरी ओर लेखक कहता है कि एक ओर वे लोग हैं जो जल्दबाजी में किसी की जमानत देते हैं, तो दूसरी ओर वे लोग भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और सोचते हैं कि ऐसा कर उन्होंने झंझट से पीछा छुड़ा लिया, जबकि उत्तरदायित्वों को निभाना हमारा कर्तव्य है। श्रोताओं, मजबूत लोग धन को बरकरार रखते हैं और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के खिलाफ अपने हिस्से को सुरक्षित करने में सक्षम बनते हैं। जितना संभव हो वे धन इकट्ठा करते हैं और किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना झंझट समझते हैं। सूक्ति ग्रंथ का लेखक ऐसे लोगों को स्वार्थी कहता है जो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। फिर 16वें पद में सहृदय नारी की चर्चा है। वास्तव में एक दयालु महिला की निशानी यही है कि उसमें सम्मान और गरिमा की भावना होती है। सहृदय नारी वह होती है जो अपनी विनम्रता और अपनी लज्जा, अपने विवेक और अपने सद्गुणों द्वारा मनुष्यों के बीच मिलनसार होती है। साथ ही जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे धन मिलता है, यानी कि वह सुख समृद्धि का जीवन बिताता है। वह आलस और बेकारी से दूर रहकर अपना और अपने परिवार का जीवन सुखमय बनाने में सफल होता है। वस्तुतः श्रोताओ, परिवार को सुखी रखने का मानो इन पदों में एक नुक्सा दिया गया है। वह परिवार सुखी होता है जहां पत्नी दयालु, विनम्र और समझदार होती है और पति ईमानदार और परिश्रमी होता है।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परिवारों के लिए विश्व सभा के उद्घाटन के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने परिवारों को निमंत्रण दिया कि वे दुनिया में बदलाव लाने हेतु एक कदम आगे बढ़ें और इसे उन सभी लोगों के लिए घर बनाएं जिन्हें स्वागत एवं स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। परिवारों के लिए 10वीं विश्व सभा का उद्घाटन बुधवार 22 जून को वैटिकन के पॉल सिस्टम सभागार में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन स्वयं संत पापा फ्रांसिस ने किया। इस साल इस सभा को पूरे विश्व में धर्म प्रांतीय स्तर पर एवं पल्लियों में एक व्यापक रूप में मनाया जा रहा है, जो पिछले वर्षों से भिन्न है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 120 देशों से करीब 2000 प्रतिनिधि रोम आए हैं। इसका उद्देश्य है विवाह की सुंदरता एवं आज के विश्व में परिवार पर प्रकाश डालना। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन के पॉल सिस्टम सभागार में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में कई परिवारों के साक्ष्य एवं उनके आनंद, चिंता, कठिनाइयों और आधुनिक दुनिया में पारिवारिक जीवन की आशा के अनुभवों को सुना। उनके साक्ष्यों को सुनने के बाद संत पापा ने विश्व के सभी विवाहित दंपतियों और परिवारों को अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया। उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उन्होंने कहा, आप जहां हैं वहीं से शुरू करें, एक साथ यात्रा करने का प्रयास करें, पति पत्नी के रूप में, परिवारों में, दूसरे परिवारों के साथ और कलीसिया के साथ मिलकर। भले समारी की छवि की याद दिलाते हुए संत पापा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कलीसिया सभी के लिए ऐसा ही हो, एक भला समारी जो आपके निकट पहुंचे और आपकी यात्रा एवं एक कदम आगे बढ़ने में आपका साथ दे, चाहे यह कदम छोटा ही क्यों ना हो। वे कदम हो सकते हैं विवाह के प्रति खुलापन, कठिनाइयों को स्वीकार करना, क्षमा देना, दूसरों का स्वागत करना और भ्रातृत्व को बढ़ावा देना। अपने संदेश के अंत में संत पापा ने जोर दिया कि हर एक परिवार का एक मिशन है जिसे दुनिया में आगे बढ़ाना है, एक साक्ष्य देना है। उन्होंने परिवारों को अपने आप से पूछने के लिए आमंत्रित किया, वह कौन सा शब्द है जिसको प्रभु हमारे जीवन के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं, जिनसे हम मुलाकात करते, वे आज हमारे परिवार में एक साथ क्या कदम लेने की मांग कर रहे हैं। संत पापा ने परिवारों को रुकने और सुनने एवं उनके द्वारा चुनौती दिए जाने की सलाह दी, ताकि वे दुनिया को बदल सकें एवं इससे उन लोगों का घर बनाएं जिन्हें स्वागत और स्वीकार किए जाने की जरूरत है, जिन्हें ख्रिस्त से मुलाकात करना है और महसूस करना है कि वे प्यार किए गए हैं। परिवारों के लिए विश्व सभा का समापन शनिवार शाम को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में समारोह ख्रिस्त्याग तथा रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान परिवारों के लिए संदेश के साथ होगा। रोम में बुधवार को परिवारों की 10वीं विश्व सभा शुरू होने पर लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परमधम पीठे समिति की उप सचिव ने आधुनिक दुनिया में विवाह एवं परिवार की सुंदरता के प्रचार के महत्व की याद दिलाई। परिवारों की 10वीं विश्व सभा की विषय वस्तु है पारिवारिक जीवन, बुलाहट और पौत्रता का रास्ता। रोम में आयोजित इस सभा में करीब 120 देशों के 2000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनका चुनाव स्थानीय धर्माध्यक्ष सम्मेलनों, ओरिएंटल कलीसियाओं के सिनट और अंतर्राष्ट्रीय कलीसिया संगठनों से किया गया है। सभा का आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है जब मानवता एक कठिन दौर से गुजर रहा है जो महामारी एवं युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित है। वैटिकन न्यूज की पत्रकार डेबोरा दोनिनी ने लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परमधम पीठे परिषद की उप सचिव गब्रेला गम्बिनो से कठिनाइयों एवं इस कार्यक्रम के द्वारा उम्मीदों पर चर्चा की। गब्रेला ने कहा, पूरे साल को कई बड़े कार्यों के साथ पारिवारिक प्रेरित देखभाल को समर्पित करने के बाद मैं मानती हूँ कि वास्तव में समय आ गया है कि परिवार और चरवाहे एक साथ कलीसिया बनाएं। संत पापा के प्रोत्साहन के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने आशा व्यक्त की कि जब यह परिवार वर्ष समाप्त हो जाएगा तब भी हम एक साथ यात्रा जारी रखेंगे। गब्रिएला ने सुसमाचार प्रचार के प्रेरित कार्यों में बच्चों को शामिल करने के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि पूरे परिवार को ख्रिस्त उद्घोषणा के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा, मैं मानती हूं कि आज हम माता पिताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने बच्चों के लिए जागरूकता को हस्तांतरित करना तथा हमारे परिवारों में ख्रिस्त की उपस्थिति का साक्ष्य देना। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी ऐसा करने सिखाना महत्वपूर्ण है, चाहे समय कितना ही जटिल क्यों ना हो। गब्रिएला ने कहा कि मुख्य बात है हर परिवार, परिवार के अंदर हर व्यक्ति की बुलाहट की घोषणा करना। उन्होंने कहा कि परिवार पौत्रता एवं शुद्धिकरण का रास्ता है जो हम सभी के लिए है। संत पापा फ्रांसिस एवं कार्डिनलों की समिति के 6 सदस्यों ने मंगलवार को एक ऑनलाइन सभा में भाग लिया। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी वक्तव्य में बतलाया गया है कि कार्डिनलों ने संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति में मंगलवार को एक ऑनलाइन सभा में भाग लिया। सभा में कार्डिनलों ने नए प्रेरित संविधान प्रेदिकाते एवेंजेलियम पर विचार किया तथा समिति ने 29 और 30 अगस्त को सभी कार्डिनलों के लिए होने वाली अगली सभा के कुछ संगठनात्मक एवं विषयगत पहलू पर भी ध्यान दिया। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार 23 जून को पूर्वी रीति की कलीसियाओं की मदद करने वाले संगठन रोको की आम सभा के प्रतिभागियों से वैटिकन में मुलाकात की तथा उन्हें एक साथ चलने का प्रोत्साहन दिया। रोको कलीसिया का एक ऐसा संगठन है जो मध्य पूर्व के ख्रिस्तों को मदद प्रदान करता है। संत पापा ने उन्हें प्रार्थना, उपवास, मदद एवं कार्य करते रहने का प्रोत्साहन दिया ताकि शांति की राह को संघर्ष के जंगल में जगह मिल सके। संत पापा ने युद्ध पीड़ित यूक्रेन की याद करते हुए उसके लिए प्रार्थना, उपवास एवं कार्य करने की अपील की। रोको एक ऐसा संगठन है जो विश्व भर से फंड जमा कर मध्य पूर्व के संघर्षरत क्षेत्रों में गिरजाघर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति, सामाजिक एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधा हेतु मदद प्रदान करता है। वैटिकन ने जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में संत पापा फ्रांसिस के धर्मविधिक समारोहों की सूची प्रकाशित की। संत पापा के मिस्सा समारोहों के व्यवस्थापक मोनसिनियोर डिएगो रावेली ने संत पापा की धर्मविधिक कार्यक्रमों की सूची प्रकाशित की जो इस प्रकार है। 3 जुलाई 14 सामान्य रविवार संत पेत्रुस महागिरजाघर में सुबह 9:30 बजे रोम के कोंगो समुदाय के लिए ख्रिस्त त्याग। 27 अगस्त संत पेत्रुस महागिरजाघर में 4:00 बजे पोप के प्रार्थनालय में कार्डिनलों की रचना हेतु लोकसभा परिषद की बैठक। 28 अगस्त अक्विला की प्रेरित यात्रा। 30 अगस्त संत पेत्रुस महागिरजाघर में 4:30 बजे पोप के प्रार्थनालय में नए कार्डिनलों के साथ ख्रिस्त त्याग। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।